श्रीरामधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विजये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरणाङ्गश्यामलिं छटाभिरमितो मन्दे कृतेन्देवरा जटज्जनपुटलोचिसंविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिरसत्तामाभिरामोदर तृतीयामृत वृष्टि श्री चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक कृष्ण नाम केवल एंटी कृष्ण नाम समस्त पाप के दूर कर देते पड़े आप प्रेम भक्ति धार आदि अनया से हृदय में उदित हो जाते एक कृष्ण नाम से इतना फल मिलता है। और यदि बहु बार अनेक बार हरिनाम किया जाए हरे कृष्ण और कभी हृदय में पुलक रोमांच असुर शक्ति विकार नहीं होते तो समझो कि हमारे पूर्व जन्म के बहुत अपराध हैं, अपराध के वजह से यह पुलक और ये सब नहीं हो रहे हैं। अब ये बतला रहे हैं पापों को तो हरे नाम से दूर किया जा सकता है किंतु पाप की अपेक्षा भी अपराध महाभयंकर और भीषण होता है। उसे साक्षात रूप से आत्मा ही आवृत हो जाता है। अनात्म वस्तु संबंधित निंदनीय कर्म के बोले पाप अनात्म संबंधी वस्तुगण प्रति निंदनीय कर्म ही पाप और आत्म वस्तु संबंधी हरि गुरु वैष्णव तुलसी गंगा जमुना वृंदावन धाम नो दीपधाम ए प्रति यदि कोई निंदनीय कर्म है ताले से जी अपराध हुए हैं इसलिए पाप का फल अनात्मा क्षण भंगुर देह से संबंध है, पाप से संबंध देह भोग करता है। किंतु अपराध का फल आत्म वस्तु देही अर्थात जीवात्मा को स्पर्श करता है। यहां तक कि विजातीय अपराध की अपेक्षा आश्रय जाति विषय जाति कृष्ण के प्रति उनके परिकर के प्रति यदि अपराध होता है उससे भी अधिक उनके प्रिय वैष्णव लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके प्रति यदि अपराध हो तो और भयंकर हो जाता है। अपराध का मूल कारण क्या है? प्रीति के विपरीत द्वेष भाव यदि हो तो देशात्मक बुरे कार्य ही सभी अपराध के मूल है। द्वेष पूर्वक गोपियां कृष्ण को की निंदा करती हैं, चोर है, चोरता है, लंपट है, धूर्त है, तो ये निंदा होगी नहीं। इसलिए द्वेष भाव के साथ में यदि हो तो ठीक, और प्रेम के साथ में हो तो वो निंदनीय नहीं है, रस का उत्कर्ष बढ़ाता है। यह देश भाव से अपराध मूलक होने के कारण प्रीति युग महापुरुषों और प्रीति के आश्रय भूत साधकों के मध्य में एक ऐसी बाधा सृष्टि करता है जिसे मनुष्य अधम होने पर अपने को उत्तम समझता है। ये माया का कार्य है, अहंकार का कार्य है, शरीर का। मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है। महापुरुषों के प्रति अपराकित प्राकृत बुद्धि से या अवज्ञा से जो अनादर होता है, शास्त्रों में महात्मा ने क्या गुरुदेव वैष्णव और भागवत धाम इत्यादि इनके प्रति निंदनीय कर्म करने से अपराध होता है, साधक को बचना चाहिए। और यदि हो जाता है अविश्रांत नाम करें और निरंतर अनुताप करके क्षमा मांगे, जिसे भगवान नाम गुरु और वैष्णव का संतोष होता है उसको अर्थात अपगत दूर होता है उसे अपराध करते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं, साक्षात कृष्ण रहते तो हो सकता है कि कोई अपराध नहीं करता, किंतु हम लोगों में सुना तो है किंतु धारणा नहीं है। नाम स्वयं कृष्ण है, अभिन्न है, नाम और नामी अभिन्न है। इसलिए नाम के प्रति यदि अनादर होगा तो ये समझो जो कृष्ण के प्रति अनादर होगा, इसलिए इससे बच करके रहना चाहिए। और नाम से भी बड़ा बढ़ करके जो नाम का आश्रय किए हैं उन लोगों के प्रति यदि अपराध हो तो और भयंकर हो जाता है। हाँ, ओ
the third chapter, the third shower of nectar on Srimad Yogacara meeting. We are hearing that the name destroys all types of sin, and even one name chanted purely can bestow Prabhupati. When that Prabhupati awakens in the heart by the influence of Harinam, then the eight static symptoms will awaken within the heart, such as the hair standing on end, the body becoming stunned, the voice choking, tears pouring from the eyes, changing complexion, etc. But Bahunam Vajina Hoyotika, despite chanting the name continuously, still, if these eight symptoms of ecstatic emotion
Right.
Sinful activities are destroyed very easily by the name, but offenses are not dispelled so easily. Because part sinful activity is already going through this body, but avarad is concerned directly with the soul. Therefore, avarad, offense, covers the soul itself. It directly affects the soul. If we commit any detestable activity in relationship to anatmavastu, material things like this body, the result is sinful activity, and we will taste that the result of that sinful activity by this body in the form of disease or anything. But if we commit detestable activity to that which is related to the soul, anatmavastu, like Krishna himself, Hari Guru Vaishnava, then the result is that avarad will directly affect the soul itself. Therefore, to commit offense to Krishna, his Sahajatya, is not so much serious. But to commit offense to that which is related to Krishna, Asrajatya, that is very, very serious. What is the meaning of avarad? To act against loving dealings. Or to be more specific, to act with a root of envy. That is called avarad. For example, the gopis say so many things to Krishna. You're a thief, you're a devotee, you're this, you're that. But because they are saying with love, there is no question of offense. But if someone says these things without love, then avarad must come. Avarad is, this offense is so serious. What does it do? Even though that person is the lowest, that person considers themselves to be the highest. Even though that person is the greatest fool, they consider themselves a great pundit. That avarad is so powerful that it makes one see Hari Guru Vaishnava or the Holy Name or Bhagavad Prasad. It makes us consider them with prakriti, to consider them to be material, such as the fearful effect of avarad. Then that which does not give satisfaction to Hari Guru Vaishnava, the name or the holy dharma, that is called Vaishnava Parad. If one is aware that one has committed these offenses, what should one do? One should bitterly lament, fall at the feet of that Vaishnava and beg forgiveness and continuously chant Harinam. Even when Krishna was manifested here, only some people made offense to him. But we have so much opportunity to know about Krishna. Their offense, we have a great chance to make avarad. For example, we have heard so much that Nama Nami, Krishna and his name are not different. But still, therefore we must understand that offense to the holy name is offense to Krishna himself. But even more severe than making offense to the holy name is making offense to that which is the shelter of the holy name, means Gurudev or the Vaishnavas. The sadhak should always be careful to remain free from these types of Vaishnava apurana.
Krishnada, right? Radha Kunda Tata Kunda Kutira.
Govardhana Parvata Jaya.
करना, परिक्रमा कर रहे हैं, पलटा समय में ठाकुर जी को अपना पीठ न देखा करके वहां पर जरा घूम जाओ। उनके सामने घुटने को ऐसे बांध करके मत बैठो, पैर को उनके सामने में पैर न पसारो, ठाकुर जी के सामने में। किसी को डांटो डांटो नहीं, किसी से अधिक प्रीति भी मत दिखलाओ। ठाकुर जी है सब करता थरता। ठाकुर जी के विग्रह के सामने पत्थर समझ करके जोर से बोलना डांटना ऐसा नहीं, प्रेम के साथ में हो और भगवान का स्तव स्तुति कीर्तन ये सब करो जो सुन रहे हैं। ठाकुर जी के सामने आपस में वार्तालाप मत करो, भगवान का स्तव स्तुति इत्यादि करो। विग्रह के सामने रो मत अपना दुखड़ा संसार का, वो जानते हैं सब। कंबल ओढ़ करके ठाकुर जी के अर्चन में नहीं जाओ, उसके केश गिर जाने से वो ठाकुर जी की सेवा में बाधक होते हैं। किसी की निंदा उनके सामने मत करो, दूसरों की स्तुति मत करो, अश्लील भाषण मत करो, अधोबाई प्रत्याग ठाकुर जी के सामने न हो, सामर्थ्य होने पर भी गौर उपचार से सेवा मत करो। माने क्या सामर्थ्य है, ठाकुर जी की सब प्रकार से सेवा कर सकते हैं, किंतु रुपया पैसा धन संपत्ति रहने पर भी बस ऐसे ही उनकी उनको प्रणाम कर दिया या कर दिया, अर्चन बंधन वैसा नहीं किया उनको। अर्थात तो अर्चन के समय में पुष्प तुलसी धूप दीप नैवेद्य और प्रधान प्रधान सेवा के उपकरणों को अर्पण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जल और बस दे दिया, फूल दे दिया, हो गया, ऐसा नहीं। थकवा ठाकुर जी को निवेदन नहीं किया और अपने भोजन कर लिया, वो विष्टा के समान है, वो नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को जैसे तैसे निवेदन करके तब खाओ। जिस ऋतु में जो फल फूल होते हैं ठाकुर जी को देना चाहिए, नहीं देने से अपराध होता है। विग्रह के सामने गुरु को छोड़ करके दूसरों को प्रणाम करना, किसी को प्रणाम मत करो। गुरुदेव के सामने मैं मौन होकर के बैठ गए चुपचाप, कोई प्रश्न करो, कुछ दंडात्मक कुछ बात करो, चुपचाप मत बैठो। अपनी प्रशंसा गुरु से मत करो या किसी से भी मत करो। देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए, ये सब 32 प्रकार के और भी सब है। और नमा प्राग है संतों की निंदा, भगवान का जो नाम करते हैं, भगवान का जो आश्रय ले लिए हैं, उन लोगों की निंदा नहीं करने चाहिए उन साधुओं की, क्योंकि साधु संतों के वजह से ही कृष्ण नाम का संसार में प्रचार होता है और करोड़ों लोगों का कल्याण होता है। पहले गुरु अवज्ञा नहीं कहा, पहले सतांग निंदा। कारण क्या, गुरु के प्रति साधारण रूप में अपराध नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है, किंतु संतों को साधारण लोग समझते हैं, गुरु से भी कम समझते हैं और उनकी निंदा कर बैठते हैं, ये महा अपराध है। ऐकांतिक नाम परायण संतों की निंदा मत करो कभी के लिए। यदि दुराचारी है अपिस्तु दुराचारो भजते माम अनंद बाग साधु रे समन, उनको साधु ही मान, उनको निंदा मत कर, जल्दी से वो फिर वो साधु हो जाएंगे। दूसरा, शिवस्य श्री विष्णु यह गुण नाम आदि सफल, पहले शो के दूसरे भाग में द्वितीय अपराध का उल्लेख। देवताओं में अग्रणी सदा शिव विष्णु है, दोनों के नाम रूप गुण इत्यादि को बुद्धि के द्वारा पृथक पृथक न माने, सदा शिव विष्णु और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य यह है कि सदाशिव को भगवान विष्णु से पृथक एक शक्ति सिद्ध ईश्वर मत मानो, नहीं तो बहु ईश्वरवाद हो जाएगा। शंकर को पृथक रूप में ईश्वर न मानो। और इस संसार में मनुष्य बुद्धि के द्वारा परम मंगलमय विष्णु के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को नामी विष्णु से पृथक समझते हैं। भगवान का नाम रूप गुण लीला भगवान से अभिन्न है, दोनों एक ही है, इसको भिन्न भिन्न मत समझो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। नाम तत्वविद गुरु को मरणशील पंच भौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य मानकर अवज्ञा मत करो, बहुत से लोग करते हैं और उनका सर्वनाश होता है, मैंने भी देखा है। गुरु को साधारण माना, अवज्ञा की, दूसरों से किसी विषय में उनकी निंदा की, और हुआ कि उनका सर्वनाश हो गया, न लोक कर गए न परलोक गए। इसलिए गुरु अपराध न हो कभी जान बूझ करते हुए। वेद और शाश्वत पुराणों की निंदा न करो, ये भगवान की मुख्य वाणी है, भगवत स्वरूप है, इसलिए वो कर्मकांडी हैं। कर्मकांडी का उद्देश्य उनको निवृत्ति मार्ग में लाना है, भक्ति मार्ग में लाना है, इसलिए शास्त्रों की निंदा मत करो। हरिनाम की महिमा को अति स्तुति समझना, जैसे कभी लोग किसी की वंदना करें, घोड़ा उड़ रहा था आकाश में, घोड़ा तो उड़ता नहीं है किंतु कहते आकाश में उड़ रहा, इसलिए नाम की महिमा ये लिखी गई। एक नाम के आभास से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, ये कवियों की कल्पना है, ऐसा कोई सोचे और नाम न करे तो यह अपराध होता है। भगवान को नाम को काल्पनिक, शंकराचार्य के मन से भगवान निर्गुण है, निराकार है, आकार निराकार है, अरूप है, अनाम है, ऐसा समझेगा तो ये अपराध है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। नाम भी करेंगे पाप भी करेंगे, नाम के बल से पाप दूर हो जाएंगे, ऐसा सोचना भी नम अपराध है। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति हैं और नाम श्रवण के विमुख हैं, ऐसे लोगों को हरिनाम का उपदेश नहीं, हरिनाम मंत्र या उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका अपना भजन का बल दूर हो जाता है। नाम की अद्भुत महिमा सुन करके भी ये शरीर में मैं और मेरा का बुद्धि रख करके जो हरिनाम करते हैं उनका नाम भी अपराध है, इन सब अपराधों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए।
So this we are discussing about apparat because previously we have been hearing the four types of apparat which awaken you to past sensual activities, through the people around. temperature rise from past pious activities to make food another. Temperature rises from aparada, and temperature rises from bhakti itself. Therefore, we should understand that the aparada greatest God. The aparada here that we are discussing is not seva aparada. Because seva aparada is destroyed by the performance of shravan and kirtan. Here this aparada is referring to nama aparada. There were 32 many offenses in seva while serving deity especially have been mentioned in Padma Purana. So, for example, it's an offense to enter the deity room or the national gate where the devotees dance with shoes. To enter the deity room or the temple being carried on a palanquin. To not follow the festival days of one's worshipful deity like Janmashtami, Ram Navami, or Gaudapurnima, etc. To enter the temple and not to give pranam to the deity. To offer prayers to the deity while not in a pure condition, while one is contaminated. To give pranam like this, at least you should join both hands. If many devotees may give pranam, they have their big bag in one hand, and they do pranam, this is their aparada. Put your mala somewhere, they do pranam with both hands. When you do pradiksha, when you are uncertain about the deity, when you walk past them, you have to show your face to the deity, you should not turn your back to the deity. It's an offense to sit and hold your legs like that, with one hand or both hands. Don't see the Hanikata like that. Maybe you already see like this. To show anger, to chastise someone, or to show too much affection to anyone before the deity, this is offense. To shout loudly or chastise someone, this is aparada before the deity. To gossip with someone before the deity, this is offense. To cry for material things before the deity, this is aparada. To worship the deity while wearing a blanket that you slept with, that is aparada. To blaspheme or praise someone before the deity, this is aparada. To pass gas before the deity, this is aparada. To be a miser, this is aparada. For example, the Lord should be offered nice things like fruits, flowers, incense, kibam. But instead, you just give him a glass of water and honey bowl. This is miserly behavior. This is offense. And put your deity to sleep for 6 months. This is not good. Some devotees, they walk in the temple, they put their shoes in their bag. This is not allowed. To eat anything without offering fruits, juices, water, even. To eat anything which is not offered to the deity, this is like eating stool. To offer pranam to anyone before the deity except Guru, this is aparada. To sit before the Guru and remain silent, that is offense. At least you should offer some prayers or some intelligent inquiry. Do not do so, is offense. To glorify yourself before the deity or before the spiritual master, this is offense. To criticize the demigods, this is also aparada. That's all we never spoke. But there is quite a few more. If you read the Padma Purana, Varaha Purana is all in there. Archipipika also. So, the Nama Purana is very serious. Seva Purana is not so serious because it can be destroyed by chanting and hearing and avoiding. There's a new edition of Archipipika coming out. So, there is Nama Aparada, it's very serious. There is 10 types of offenses to the holy name. The first one is Vaishnava Ninda. To criticize someone who has taken one point in shelter of the holy name, that is offense to the holy name itself. Why? Because people understand the glories by the preaching of such a one-pointed Vaishnava. that would criticize such a blasphemous and disrespectful glory of the Holy Name. It should be noted this is the first offense to the Holy Name. Offense to the Guru is number three, because it's very rare that someone blasphemes their own spiritual master. But it's quite easy to commit offense to a sadhu, because we think, oh, sadhu is an ordinary person, he is not the same as Gurudev, therefore I can blaspheme him. You should understand that Vaishnava is not less than Guru. To blaspheme such a sadhu, even if he has faults, is aparad. In Bhagavad Gita, Krishna says, Apichek Sudaracharo Bhajate Mamananibak, Sarvehati Mantapyasananasthisa. Even if my devotee, one point of devotee, commits the most abominable activities, I say he is a sadhu. Therefore, quickly he will be rectified. Therefore, to criticize such a devotee is Vaishnava aparad. Number two, to consider Vishnu and Sarasvati to be separate tattva, this is aparad to the Holy Name. And also to think that Vishnu and Shiva are the same is also aparad, because then comes the fault of. What's it called in the worship of gods?
Polytheism.
Polytheism, don't do that. So to think Vishnu and Shiva is different is aparad. To think Shiva and Vishnu is the same is also aparad. So, number three. To think that the names, qualities, pastimes, and lila of Vishnu to be separate from Vishnu, this is offense. Number four, to consider the Tattvic Guru, the spiritual master who knows all Tattva and who is an expert in the chanting of the Holy Name, to consider him to be an ordinary person with a material body and to disrespect him or neglect him, that is Maha, a great offense to the Holy Name, that person will lose everything. You could have said, I have seen so many in my life. Number five, to blaspheme the Veda Shastras. The Veda Shastras are the no different Swarup of Bhagavan himself. There are even the scriptures which promote the path of karma, karma kanda, one should not blaspheme them. Because the karma kanda Shastras are to bring the common person to the path of the Vrittiman, or gradual renunciation. Therefore, understanding the intention of even the karma kanda scripture, one should not criticize them. Number six. Anyway, I'm up to number six here. The Holy Name is all-powerful. Even chanting once destroys all type of sin. If you hear this and think, well, this is just exaggeration, this is aparad. Now look at the next one. To consider like Sankaracharya. Sankaracharya said the names, forms, qualities of Bhagavan are imaginary. Actually, Bhagavan is Nirgun, Nirashesh, Nirakar, Niranjan, Nirshakti. To think like this is an offense. The names, forms, and qualities of Bhagavan are not imaginary. Number
eight.
To commit sin, and then to think it's okay by chanting Hare Krishna, I'll be free from that sin. That is non-papuri, that is a great offense to the Holy Name. That will become like a thunderbolt in your heart. Number nine. To give instructions on the glory of the Holy Name to those who have no faith, or to those who are opposed to hearing, that is offense to the Holy Name. And number 10, despite the glories of the Holy Name, to constantly think in terms of I and mine, this is also Nama Parad, the sadhu should make it there to save himself from these 10 offenses to the Holy Name.
शास्त्रों में लिखा गया है कृपालु अकृत दोह चितेच्छु मौनस्थ सत्यसार सम सर्व उपकार। ये 26 वैष्णव के गुण या लक्षण हैं। यदि उनमें ये किसी में गुण नहीं है, एक व्यक्ति में सर्व आचार विवर्जित षठ बुद्धि पति जगत वंचक हो, किंतु उसने गुरु से हरिनाम लेकर और भगवत भजन परायण हो गया है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग कृष्ण की आराधना करता है, दूसरे किसी की नहीं, कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए। किंतु है दुराचारी सब, सदाचारी ही सब, क्षिप्रम और धर्म, शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे दुराचारी लिप्त किंतु भजन परायण एकांतिक रूप में हो, उसकी निंदा नहीं करो, नहीं तो ये भी अपराध हो जाएगा। उद्धव जी, कृष्ण कह रहे हैं मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी, किसी से भी वो बैर नहीं रखता, घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। उसका जीवन का सार सत्य है, उसके मन में किसी प्रकार की वासना नहीं होती। वह समदर्शी और सबका उपकार करने वाला होता है। उसकी बुद्धि में कामनाएं नहीं उगने से कलुषित नहीं होती, संयमी मधुर स्वभाव पवित्र चित्त का होता है। ऐसे ही वह किसी से भी सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता है। ऐसे ही भक्त लोग, उसके हृदय में करुणा भरी रहती है और मेरे तत्व का यथार्थ ज्ञान लगता है। तो वे कोई ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही यथार्थ साधु है, और जिनमें इनमें गुण नहीं है वो साधु नहीं है, उसकी निंदा करेंगे। मत करो, ऐसा मत करो, उनके चरणों में ही यथार्थ नमापराध है। जिनमें ये पूर्वोक्त गुण नहीं है, ऐसे साधु वेशधारी कपटी व्यक्तियों की निंदा अपराध नहीं होती। कोई कहे नहीं, निंदा खबरदार मत करो, हरिनाम का आश्रय ले लिया है, जैसा भी है जल्दी से जल्दी वो पापों से मुक्त होकर के साधु हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा समझना भूल है, क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, अपि चेष्टु आचारो। यदि कहो कि उत्तम वैष्णव लोग या वैष्णव लोग कोई निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, उसके तर्क में ध्यान ही नहीं देते हैं, अपना भजन करते रहते हैं। इसलिए वो यदि कोई निंदा करे तो उस पर ध्यान नहीं देते, वो लेते नहीं है इसको, ऐसा मत समझो। वो नहीं लेने पर उनकी चरण धूलि कभी क्षमा नहीं कर सकती, नहीं क्षमा कर सकती। इसका उदाहरण से के साथ में बनाएंगे, महाभागवत की चरण रज अपराध सहन नहीं कर सकती। अम्बरीश महाराज दुर्वासा ने कुछ अपराध किया, शंकर जी ब्रह्मा जी स्वयं नारायण क्षमा नहीं किया। जाओ जिनके चरणों में किया अपराध वही करो, नहीं तो उनकी चरण धूलि क्षमा नहीं करेगी। श्रीमद् भागवत में महापुरुषों के लक्षण वर्णन प्रसंग में कहा गया, सर्वभूते सुजह पश्यत भगवत भावम आत्मन हुतानि भगवतात्मन्येषु भगवतो। श्री हवि जोगिंद्र श्री नेमी महाराज के प्रति करें, हे महाराज, जो समस्त प्राणियों में अपने उपास्य भगवान को दर्शन करता है और उपास्य पर अपने उपास्य में समस्त प्राणियों को देखता है, विराजमान दिखता है, वे समस्त प्राणियों को अपने ही समान प्रेम युक्त दर्शन करते हैं, वो उत्तम भागवत। जैसे प्रहलाद महाराज के उदाहरण में यही बतलाया गया है, वो अपने उपास्य देव में समस्त प्राणियों को देखते हैं और समस्त प्राणियों में अपने उपास्य देव को दर्शन करते हैं। उनकी यदि कोई निंदा करे अथवा दोहाचरण करता है तो भी वे क्रोधित नहीं होते, किसी का भी कोई अपराध नहीं ग्रहण करते। हिरण्यकश्यप ने उन प्रहलाद महाराज के प्रति इतना अत्याचार किया, विष दिया, आग में जलाया, क्या नहीं किया, तलवार लेकर के मारा सब। प्रहलाद महाराज ने कुछ लिया नहीं, किंतु उनकी चरण की धूलि रक्षा नहीं कर सकी। नृसिंह भगवान प्रकट कर उसे मार डाला। इसलिए कोई स्वच्छ शक्त है कि जब वो क्रोध नहीं करते हैं किसी दुराचरण से, द्वेष करने से, साधु किसी का अपराध भी ग्रहण नहीं करते। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि वे महापुरुष किसी के प्रति क्रोधित ही नहीं होते, अपराध नहीं ग्रहण करते, तो यदि अपराध किया जाता है तो अपराध नहीं है। नहीं, अपराध है। ग्रंथकार का कहना है कि इस महाभागवत किसी का अपराध ग्रहण नहीं करने पर उनकी निंदा करने वाले व्यक्ति का चित्त अत्यंत कलुषित हो जाता है और क्रमशः और अपराध करते 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 अंतिम सीमा में जाते हैं और सर्वनाश हो जाता है। अपराधी व्यक्ति यह भूल जाता है माया के वजह से जो मैं अपराध कर रहा हूँ, सच्चा कि मैं तो सत्य बात कह रहा हूँ, किंतु वह समझता नहीं। यहाँ पर पुनः प्रश्न हो सकता है, यदि वे महापुरुष स्तुति प्रणति निंदा देश को समान समझते हैं तब उनकी निंदा करने से वो क्रोधित नहीं होंगे, उसी प्रकार से स्तुति प्रणति इत्यादि करने के द्वारा ये प्रसन्न होंगे, कोई संभावना नहीं। अतः स्तुति और प्रामाणिक प्रणाम के द्वारा उनका अनुगमन करने से निंदाकारी का चित्त शोधन और अपराध उपशम कैसे हो सके। चाहे स्तुति करो चाहे निंदा करो, वो तो कुछ लेते नहीं हैं, तो उनकी स्तुति करके ही क्या लाभ है। स्तुति नहीं नहीं करो, स्तुति करना चाहिए। दक्ष के यज्ञ में श्रीमन महादेव का अनादर देख करके क्रोधित होने वाली सती देवी के वचनों को उद्धृत करके प्रणाम प्रमाणित कर रहे हैं, महाभागवतों के द्वारा अपराध ग्रहण न किए जाने पर चरण रेणु से। वो कौन? चित्रकेतु महाराज, वो तो सिद्ध हो गए हैं और भाई के रूप में शंकर जी को देख करके उनकी कुछ निंदा नग्न हो करके इस सभा में ऐसा कर रहे हो और पार्वती जी को अपनी गोदी में लिए हुए, तुम्हें कोई इसका ज्ञान नहीं है। शिव जी की निंदा की, शिव जी हंस करके उड़ा दिया, ये हमारे गुरु भाई हैं, किंतु उनकी चरण की धूलि सती देवी ने उनको साथ ही साथ में अभिशाप दिया जिससे कि वो वृत्रासुर। इसी तरह से समझना चाहिए, खूब सावधान। वैष्णव अपराध में लेने पर भी उनकी चरण धूलि कभी भी क्षमा नहीं करेगी और किसी में कुछ गुण नहीं है, वो भागवत का बतलाया अब कृपालु मौन इत्यादि नहीं रहने पर भी हरिनाम आरंभ किया है उसका भी मत करो, अपने तो अपराध हो जाएगा, हरिनाम में मन ही नहीं लगेगा। हाँ, यह योग
scripture mentions the 26 qualities of pure Vaishnava, such as Saucham, Maun, etc. Pure, soft-spoken, etc. But if one, even the worst person, the most sinful person, who engages in all types of bad activities, but they have taken shelter of a bona fide guru, and they are performing Harinam with a one-pointed mind, they worship only Krishna, and all their endeavors are only to please Him. Then for such a soul, Sri Krishna Himself says in Bhagavad Gita, Akichesadurachara Vadatemanamanyava, Sarvadeva Mantavya Samitrasnikisa, Chikram Bhagavadhyama. Krishna Sadhigas, one moment Sadhu would engage in the worst activities, don't criticize him. Krishna, because I said he's a Sadhu, Chikram Bhagavadhyama. He will quickly become a most religious person. Therefore, even if the most, a person with the most abominable character, but still there are one point in their performance of Hari Bhajan, to criticize them is an offense. In the 11th canto, Sri Krishna describes the Buddha, the glories of the devotee. Krishna says, the devotee is not different than my very self. He is my Kripamurti, my mercy in the personified form. Only the sadhu who performs my bhajan, his life is successful. Such a devotee is sadhu vaka, they work for the benefit of all, and they are samadarshan, equal to everyone. Such a my devotee offers all respect to others and never denies his own respect. My devotee is always merciful, and he knows my tattva in truth. Such is the glory of the devotee of Krishna. But if one thinks, oh, to that much, a devotee manifests the 26 good qualities, then to that degree he is a sadhu, and to that degree he does not manifest the 26 qualities, then to that degree he is not a sadhu, to think in that way is offense or aparad. Because the real quality of sadhu, they are completely surrendered to Krishna. Therefore, even if a one-pointed sadhu is bad in character, one should not criticize him. By chanting the holy name quickly, these faults will be destroyed and he will be pure. If one thinks, if I blaspheme a Mahabhagavat and Uttar Vaishnav, there can be no problem, because such a devotee is free from the desire for praise and free from being disappointed when he is blasphemed. Then, because he never accepts any offense by blaspheming, there's no question of Vaishnavarad. And if he accepts Avarad, that means he cannot be a Vaishnav. We should not think that. An Uttar Vaishnav never accepts any offense, but his foot does. His Tadaduri, his foot does will come from us, and his foot does will be offended by our behavior. Just see the example of the Vasarishi. He made offense to the great devotee, Amrish, who went to Brahma, Shiva, and even Narayan, but they would not forgive him because he made the Vasarishi offense to the foot does of Amrish. Maharaj. Amrish Maharaj never considered that he had been offended. There was Sri Hari, one of the Nadia Kendras in the 11th canto. He described the symptom of the Uttar Vaishnav, Sada Uttar Shriya Pasya Bhagavad Bhavamatana, who sees Vishnu in all living entities and who sees all living entities in Vishnu, or his virtual deity. That person is called Mahabhagavat. Just like Prahlad Maharaj, he saw his Ishvara inside everything, even inside a stone pillar. Then, and he saw all the energies inside his Ishvara. Therefore, Prahlad Maharaj, he never took offense by the bad behavior of Rani Kasipu. Even though Rani Kasipu tried to throw him in fire, gave him poison, tried to chop him into pieces, had infected snakes and elephants, but Prahlad Maharaj never took offense. But still, Rani Kasipu was destroyed by the offense he made to the foot dust of Prahlad Maharaj. Therefore, such a person will continue making more offense, more offense, more offense, until they destroy themselves. Such is the power of Maya on the, that person who makes offense. That person never thinks, I am committing Vaishnava Parada. He thinks, I am telling the true thing. So, and then on the other hand, one thinks, well, maybe I did make offense to Pure Vaishnava or Buddha, but because he's not interested in praise, also, there is no need in begging forgiveness or following his instruction, serving him or offering praise to him. No, don't think like this. You have to do. You have to beg forgiveness if you make offense to a Vaishnava. Just see another example in the Bhagavatam, Daksha, Prajapati Daksha. He made offense to Lord Shiva. Lord Shiva never accepted any offense, but he was destroyed by his other eye. Or just see the example of Chitraketu. Chitraketu Maharaj was a perfected soul, and he saw Shiva without any clothes embracing Parvati and giving Bhagavata. Then Chitraketu laughed, ah, just see Lord Shiva, what he's doing. Shiva smiled. He knew, oh, my godmother is making some joke. Therefore, Shiva was not offended. But the food dust of Shiva, Parvati, food dust means the follower. Uma, she took offense to the offense that Chitraketu made to Shiva, and she cursed him to become a demon, and just so. Therefore, one should be very, very, very careful. There are demon sadhu has no good qualities, but they have taken shelter of Harinam in a one pointed group. One should not blaspheme him in any way. No way on the
beach. Vaishnava Thakur.
Hare Krishna. অনেক ভক্তগণ বৃন্দাবনে এবং গোবর্ধনে অনেক নাম দীক্ষা নিয়েছে।